मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 4 अगस्त 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लिए मैंने बहुत ही सरल और सादा सा विषय चुना है और इनफैक्ट यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने बहुत बहुत बातें की हैं, लेकिन सच पूछे कि यह विषय ऐसा है कि न तो सुनने वाले को तसल्ली होती है यानी कि मन भरता है और न ही सुनाने वाले का भी मन भरता, उसको भी लगता है कि नहीं कहीं कुछ रह गया है, कहीं कुछ रह गया है, कुछ और होना चाहिए। या यूं कह लीजिए कि अगर सुनने और सुनाने दोनों का मन भर जाता है तो फिर लगता है कि नहीं एक बार इस पर और बात की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि पेड़ है, पेड़ की जड़ें जमीन के गहरे जा चुकी हैं, अब वो जड़ें दूर दूर तक फैल करके पेड़ को नमी प्रदान कर रही हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि इस पेड़ में कुछ बाल्टी पानी के उड़ेल दिए जाएं या बरसात हो जाए तो कम से कम जो जड़ें हैं वो थोड़ी सी और तर बतर हो जाएं और पेड़ की जो डालियां हैं और जो पत्ते हैं वो खूब टटके हो जाएं, इसे आप यूं भी कह सकते हैं। दरअसल मित्रों, हुआ यह कि अभी पिछले सप्ताह मेरा एक लेक्चर था यहां भोपाल में, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, तो उनका सत्र आरंभ हो रहा था, सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो उसमें विश्वविद्यालय 3 दिन के लेक्चर्स का आयोजन करता है और उसमें अलग अलग फैकल्टी के लोगों को बुला करके वो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा करके वो कुछ बातें सुनवाया करते हैं, इंटरेक्शन भी होता है। मुझे भी बुलाया गया और मुझे विषय दिया गया था समय प्रबंधन का। मैंने समय प्रबंधन पर बातें की और समय प्रबंधन के केंद्र में, चूंकि मैं उसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मान करके चलता हूं, इनफैक्ट टाइम की तो कोई प्रॉब्लम देखी है नहीं, टाइम तो सबके पास उतना ही है, लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग उस समय में इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं और कुछ लोगों को साधारण सा भी काम करने का समय नहीं मिल पाता, वो समय की समस्या का ही रोना रोते रहते हैं, तो ये मूलतः एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मैंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर ही बातें की। ठीक है, बातचीत होती रही, आखिरी में 15 मिनट का जो वक्त था वो इंटरेक्शन के लिए रखा गया था, प्रश्नोत्तर के लिए, और स्टूडेंट प्रश्न पूछने लगे और इसके बाद एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया था जो मैं समझता हूं कि बहुत ही मौजू प्रश्न था, बहुत ही प्रासंगिक था और ये हर समय प्रासंगिक रहता है, जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। मित्रों, उस फ्रेंड का प्रश्न ये था कि सर, जब हम कोई भी मोटिवेशनल बात सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो 2-4 दिन के लिए तो खूब जोश रहता है और हम उस जोश में काम अपना करते भी रहते हैं, जुटे भी रहते हैं, लेकिन इसके बाद वो ढीला पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है, जोश कम हो जाता है और फिर हम अपने उसी पूरे पुराने रवैये पर, पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं, तो सर इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये तो आपकी भी समस्या होगी और इनफैक्ट आपकी भले ही न हो, हर बड़े व्यक्ति की समस्या रही है, जिन्हें आज आप बहुत सफल लोग कहते हैं, मानते हैं, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, तब उनकी मानसिक संरचना का सही अंदाजा आपको लग पाएगा। आज मैं इसी पर थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा और सच पूछे तो मैं 1-2 अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा। इनफैक्ट आज मॉर्निंग वॉक करते समय मुझे अपने वो 1-2 वाक्य इस तरह के याद आ गए, तो मुझे लगा कि इन्हें इसी विषय पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां है और वो ये कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं, स्टूडेंट ही नहीं आम आदमी भी क्या समझता है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सफल लोग हैं, ये कभी निराश नहीं होते, इनके मन में कभी द्वंद नहीं आता, ये कभी दुखी नहीं होते, ये कभी कमजोर नहीं पड़ते, ये कभी अपने काम से उबते नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। मैं उसी सच्चाई पर आपको ले जाना चाह रहा हूं। मित्रों, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कितना भी महान व्यक्ति क्यों न हो या रहा हो, अंततः जो मनोविज्ञान है, मानकर चलिए कि आपके जैसा ही है, मेरे जैसा ही है, हम सबका मनोविज्ञान एक जैसा है, तो उस मनोविज्ञान के अंदर निराशा, हताशा, जोश, उत्साह, ये सारी चीजें आती रहती हैं। आपको कोई भी तालाब, झील, समुद्र ऐसा नहीं मिलेगा जहां लहर तरंगे न उठती हों। तरंगे तो उठेंगी ही क्योंकि वो पानी है, लिक्विड है। तो हम सबके दिमाग में लगभग लगभग एक जैसी ही तरंगे उठती रहती हैं, उठेंगी ही वो। फर्क केवल इतना होता है कि जो लोग आपको सफल दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, उन तरंगों के उठने की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर तरंग मुझे नुकसान पहुंचा रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे, और उन्हें लगेगा कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर तरंग है या तरंगे हैं ये मुझे लाभ पहुंचा रही है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे। बस इतना ही करते हैं, वो फ्रिक्वेंसी को रोक नहीं सकते, एकदम नहीं रोक सकते। अब सवाल ये है बिल्कुल, और ये बहुत ही जायज सवाल है और बहुत ही व्यावहारिक भी है, कि आप कहें कि सर अब ऐसा किया कैसे जा सकता है कि हम फ्रिक्वेंसी को अपने हिसाब से बढ़ा लें और अपने हिसाब से घटा लें, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो मित्रों, इसको लेकर के मैं अपने एक दो अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा, फिर इसके मूल में जो मनोविज्ञान है उसको बता करके फिर मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट का समापन करूंगा। दोस्तों, मुझे एक घटना याद आई है, घटना 1978 की है। उस समय मैं एमए फाइनल का स्टूडेंट था, तो अंबिकापुर में मैं रहता था, सरगुजा जिले का जो हेडक्वार्टर है। वहां कुछ लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाई जाती है, और ये जो कांवड़ चढ़ाई जानी थी ये बिहार के भागलपुर से, अब तो झारखंड में शायद वो आ गया है, भागलपुर से कांवड़, यानी कि कांवड़ को समझते होंगे आप, एक डंडा जैसा है जिसकी दोनों ओर लोटे लटक रहे हैं और आप कंधे पर लेकर के उस कांवड़ को ले जाते हैं, तो जो लटकते हुए लोटे हैं उनमें आप भागलपुर से जल भरते हैं और उस जल को अपने कंधे पर ले जाते हैं। लगभग लगभग शायद 80 किलोमीटर के आसपास की वो दूरी होती है। आप पैदल चलते हैं, पांव में चप्पल नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात कि आप कांवड़ को जो आपने अपने कंधे पर रख रखा उसे जमीन पर आप नहीं रखेंगे, तो उसके लिए तो चलिए व्यवस्था है, जगह जगह पर खंभे लगे हुए हैं, आप ले जाकर के वहां टांग दीजिए और पूरे पवित्र भाव के साथ आपको ले जाकर के पैदल चल करके और जो बैजनाथ धाम है वहां जो शिवलिंग है वहां आपको वो जल अर्पित करना है। ये एक धार्मिक परंपरा हमारी है, धार्मिक आस्था है, मान्यता है। तो मित्रों, जो जोश था और मैं भी उनके साथ हो लिया। अब जब पहले दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, बड़े उत्साह के साथ सच पूछे तो हमने पानी भरा और एक उस दिन की यात्रा भी की, लेकिन जब सुबह उठे तो पता लगा कि तो पैरों में फफोले पड़ गए हैं, नंगे पांव चलने की आदत नहीं है, रास्ता भी कच्चा है, अब क्या किया जाए। मित्रों, 5 दिन की वो यात्रा थी और हर दिन की यात्रा इतनी उबाऊ लगने लगी, इतनी दुखद, मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या लगने लगी, बहुत ज्यादा। मैंने मुझे ये लगा कि कहां से यह निर्णय ले लिया, ये उसका एक पक्ष हुआ। देखिए, शुरू में मैंने खुद निर्णय लिया, दूसरों के बात सुनकर जोश आया, निर्णय लिया, पहले दिन में उत्साह भी में भी रहा, लेकिन धीरे धीरे डाउन होने लगा। अब ये मनोविज्ञान बन गया तो फिर इसको संभाला कैसे गया। देखिए, हुआ ये कि मैंने कैलकुलेट कर लिया पूछ करके कि हम 5वें दिन पहुंच पाएंगे, एक दिन में इतनी यात्रा कर रहे हैं, धीरे धीरे माइलेज कम होते जाते हैं, आप थकते जाते हैं, तो हम 5 दिन में पहुंच पाएंगे, तो पहले दिन की यात्रा तो निकल गई। अब मैंने इसको रिवर्स गियर में लिया, काउंटिंग को बता रहा, जिसको उल्टी गिनती कहते हैं। 4 दिन बचे हैं, तो अब मैंने सोचना शुरू किया कि अब 3 दिन बचे हैं, तो 1 दिन जो पूरा किया उसकी खुशी को अपने अंदर शामिल किया, यानी 1 दिन का कार्य जो संपन्न हुआ है उसकी ऊर्जा को अपने अंदर लेकर आया। अब 3 दिन बचे हैं, इसके बाद 2 दिन बचे हैं, तो 1 दिन की जब और यात्रा पूरी हुई तो मैं इस पर अब फोकस नहीं कर रहा हूं कि 2 दिन बचे हुए हैं, मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि नहीं, आज की जो यात्रा है वो पूरी हो गई, किसी भी तरीके से पूरी हो गई। अरे, आप तो 2 ही दिन बचे हैं, जब 3 दिन की यात्रा पूरी हो गई है तो 2 दिन की भी पूरी हो जाएगी, अरे अब तो 1 दिन ही बचा है। और मित्रों, उस ऊर्जा की ताकत के आधार पर मैंने वो यात्रा पूरी की। हालांकि मैं भगवान शिव से फिर मैंने यही प्रार्थना की कि भगवान, ये बहुत कठिन है और आप तो भोलेनाथ हैं, और मुझे लगता है कि एक भोलेनाथ जो हो वो इतनी तकलीफ अपने भक्तों को कैसे दे सकता है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरी मुझे क्षमा करेंगे, मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है कि मैं दोबारा इसको दोहराऊं। मैंने वो यात्रा पूरी कर ली। इसका मतलब है कि मैंने अपने अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया कि मैं उस यात्रा को पूरा कर सका। मित्रों, यही होता, आईएएस की तैयारी भी हम लोगों ने भी की है, आपके मन में जो उठापटक मचती है वही उठापटक सेम हम लोगों के दिमाग में भी मचती थी। कभी कभी तो ये लगता था कि यार किसी तरह से परीक्षा हो जाए और छुट्टी मिले, हमारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है छोड़ो इसको, लेकिन इतना जो इसका जो तनाव है दबाव है उससे तो कम से कम मुक्ति मिल जाएगी और जिंदगी तो चलती रहती है। लेकिन हम इसी पर नहीं टिके रहते थे, ये वेव्स आई, एक तरंग आई, फिर हम सोचते थे कि अगर हो गया तो जिंदगी क्या होगी। फिर टाइम टेबल है, एक सिलेबस के आधार पर टाइम टेबल बना रखा है। जब दिन भर की मेहनत के बाद आप उस टाइम टेबल को पूरा कर लेते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है, जब वो पढ़ाई पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली उस पढ़ाई को पूरा करने का इतना अद्भुत सुख होता है कि मैं बता नहीं सकता, आप भी उसका अनुभव करते होंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, यदि किसी कारण से आलस्य के कारण फालतू के तर्क दे करके हम उस काम को उस दिन पूरा नहीं कर सके, पढ़ाई का वह हिस्सा हमारा उस दिन पूरा नहीं हुआ, तो अब आप चेक कीजिए कि क्या आपका मन उदास होता है, क्या आपका मन दुखी होता है, क्या आप अपने को कोसते हैं, क्या आप अपने को सजा देते हैं। और फिर ये बात और कि जो आज आपने पूरा नहीं किया है तो उसके प्रायश्चित के रूप में क्या आप उसको कल पूरा करते हैं, कल के टाइम टेबल को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही आज के बचे हुए को भी पूरा करते हैं, प्रायश्चित तो तभी होगा ना, तभी आप ठीक स्थिति पर पहुंचेंगे। क्या ऐसा होता है? और अगर ये दोनों चीजें हो रही, देखिए खुशी वाली चीज तो होती ही है क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन जो हमने नहीं किया है उसका जो अफसोस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल ये लग रहा है कि चलो यार एक दिन बीत गया, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करें, कोई हमारे हाथ में नहीं था। नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अफसोस नहीं हो रहा है, तो ये जरा सा गड़बड़ है। फिर आप जो उसकी वेव्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको अफसोस होना चाहिए। और जिस दिन ये अफसोस होने लगेगा आप देखेंगे कि फिर चाहे कि ऊब होगी, चाहे तनाव होगा, चाहे दबाव होगा, थोड़े समय के बाद आएगा, लेकिन फिर वो आपको काम में लगा देगा कि नहीं नहीं भैया, नहीं तो फिर बाद में हमी को तो भुगतना है, हमी को अकल तो और डबल मेहनत हो जाएगी, तो भैया आज ही इसको पूरा कर लो। और जब आप उसको पूरा कर लेंगे तो फिर आपका मन आनंदित हो जाएगा। मित्रों, अंत में मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है इच्छा, डिजायर, बड़ा काम करने की इच्छा है, बड़ा बनने की इच्छा है, और दूसरी है आवश्यकता, नेसेसरी, नहीं ये मेरी आवश्यकता है, बड़ा बनना मेरी जरूरत है, सिविल सर्विस को क्वालिफाई करना मेरी जरूरत है, ठीक उसी तरह से जैसे कि मेरी जरूरत है सांस लेना, मेरी जरूरत है खाना भोजन करना, मेरी जरूरत है रात में सोना, ये नेसेसिटी है। याद रखिए मोबाइल फोन मेरी जरूरत नहीं है, ये मेरी इच्छा है, गाड़ी मेरी इच्छा है, बंगला मेरी इच्छा है, लेकिन हवा, पानी, भोजन, सांस, नींद, ये मेरी आवश्यकता है। जिस दिन हमारा मकसद इच्छा से गहरे जाकर आवश्यकता में तब्दील हो जाता है, उस दिन हम नहीं करने पर अफसोस करना शुरू कर देते हैं, और जब अफसोस होने लगता है तो बट नेचुरल है कि जो लहरें शांत हो गई हैं उनमें फिर हम एक पत्थर फेंक कर उसमें एक नई लहर उत्साह की पैदा करते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बस इतना ही। अब एक छोटी सी सूचना है, जैसा कि मैंने बताया कि आज शुक्रवार है, तो मित्रों इस बार 3 दिन का गैप आ रहा है, शुक्रवार तो आज है, जो गैप होंगे वो है शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार का गैप इस वजह से कि रक्षाबंधन का त्योहार है, आप सब पूरे उत्साह और मन के साथ रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाएं। पूरी एकेडमी की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आप सबसे 3 दिनों के लिए अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।